राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24/3/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भिन्नासर में हुआ। राम
राम राम राम नारायण 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 बोलो महाराज। मन को सोचे नहीं भी आई नहीं भी तो आप कोई पूछ लो बढ़िया बता बताना। जैसे हम बताया करते हैं तो कल सच्चिदानंद की बात कही तो उन्होंने कोई पूछनी बात है पूछो चलाओ कोई प्रश्न छेड़ो और कोई बात पूछ रही हो।
चेतन बोध का विस्तृत वर्णन कीजिए थोड़ा।
बोध का वर्णन होता नहीं भैया। बोध जो चीज है बोध का वर्णन नहीं होता है। बोध का तो अनुभव होता है वर्णन नहीं होता है।
बोध होता है पर वर्णन नहीं हो सकता।
हाँ जी
बोध होता तो है।
बोध होता है
वर्णन नहीं होता।
वर्णन कैसे करे उसका वर्णन शब्द वहां पहुंचते नहीं। मन समेत दी जानन वाणी मन सहित वाणी को जानते नहीं तो वाणी कैसे मरण करे। मन भी मन कैसे करे बुद्धि है वो भी यन मन सा न मनु थी ये ना हो मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि ने दम यदि। अब देखो बात एक याद आई है। जैसे कोई बड़ा कहे कि तुम वर्णन करो आंख का वर्णन करो तो देखने की शक्ति है उसका वर्णन करो तो देखने की शक्ति का कैसे वर्णन करें तो इसके वर्णन का एक उपाय है मानो जिससे दिखता है वो आंख है। और वर्णन को कैसे करोगे जिससे दिखता है ना जिससे दिखता है वो आंख है।
आंख को देख नहीं सकते।
आंख को देख नहीं सकते। इंद्रियां सभी अतिंद्रिय है। इंद्रियां अतिंद्रिय है मानो इंद्रियां इंद्रियों का विषय नहीं है। आंख है इंद्रिय है ये सोच तो दुश्मन लोग है ना पता मत जाएगा। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्तायं विषयान् उपसेवते। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च 5 ज्ञानेंद्रियां बता दी। अधिष्ठाय मनस्तायं मन को अधिष्ठित करके विषयों का सेवन करता है इंद्रियों से तो इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है मन के अधिष्ठित से तो मन है मनो ही दशेन्द्रियाध्यक्षम जत पद्म गोल के स्थितम मनो ही दशेन्द्रियाध्यक्षम दस इंद्रियों का मालिक है मन। मन सब इंद्रिय के साथ रहता है जैसे स्रोत रहे कान रहे तो कान के साथ आंख नहीं रहती। कान के साथ आंख नहीं रहती आंख के साथ कान नहीं रहता घ्राण के साथ पकनी त्वचा के साथ घ्राणी ऐसे इंद्रियां दो साथ में नहीं रहती परंतु मन एक है वो श्रोत्रम चक्षु श्रोत के साथ ही रहता है चक्षु के साथ ही रहता है स्पर्शनम त्वगिंद्रिय के साथ भी रहता है रसनम रसनेन्द्रिय के साथ भी रहता है घ्राण नासिका है इंद्रिय इसके साथ भी मन रहता है तो मन दसों इंद्रियों के साथ रहता है, इंद्रिय सब के साथ नहीं रहती, अपने इंद्रिया में अपने इंद्रिय रहेगी। तो चक्षु का वर्णन करना हमारे जिससे देखते हैं वो चक्षु है, ऐसे ही जिसने चक्षु का भी ज्ञान होता है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राण में पांच इंद्रियों का ज्ञान होता है और मन का भी ज्ञान होता है, मन को भी जानते हैं, मन भी जानने में आता है, मन का वर्णन नहीं होता है, मन जानने में आता है। मन क्या, जो चीज को मनन करने वाली वस्तु है, हरि विष्णु चिंतन करने वाली वस्तु है, तो वो मन है। चित्र मन दो भाग भेद भेद कहते थे, दोनों भेद एक ही है, मन बुद्धि चित्र अहंकार चार अंतःकरण चतुष्टय है, ये एक ही चीज है, वृत्ति भेद से चार नाम है इसका। तो मन है, वो मनन मन करता है। अब ध्यान देना, आप ज्ञान का वर्णन कैसे हैं, बोध का वर्णन करते हैं, तो बोध के वर्णन के लिए ध्यान दें आप, जो मन से मनन करते हैं ना, तो मन से मनन करते हैं ये परमात्मा नहीं है। जिसकी शक्ति से मन मनन करता है वो परमात्मा है, बुद्धि परमात्मा नहीं है। जिसकी शक्ति से बुद्धि काम करती है, जैसे दर्पण होता है, तो सूरज के सामने दर्पण करने से वो दर्पण का एक प्रतिबिंब पड़ता है, वो मकान के भीतर गुफा के भीतर भी अगर दरवाजा हो तो दरवाजे के भीतर होकर सूरज का वो तिलका लेकर के ऐसे हम करते हैं तो गुफा के भीतर बहुत जाकर प्रतिबिंब पड़ता है, खास जैसा दिखता है वैसा अंधेरे में दिखता है, मकान के भीतर वो प्रकाश पड़ता है, उससे प्रकाश में कुछ प्रकाश हो जाता है पर मकान में भी, परंतु प्रतिबिंब पड़ता है वहाँ एक असर पड़ता है, तो गोल गोल कांच है तो गोल गोल वो प्रकाश होता है। तो जो दर्पण है वो दर्पण का प्रकाश नहीं है, दर्पण गत जो सूरज है वो सूरज का प्रकाश है, वो खुद दर्पण का प्रकाश नहीं है, परंतु दर्पण के बिना सूरज वहां जाता नहीं, तो दर्पण के दर्पण में एक सूरज को ग्रहण करने की शक्ति है, वो शक्ति लेकर के वो दूसरे को प्रकाशित करता है। ऐसे मन में बुद्धि में इंद्रियों में जो विषयों को प्रकाश करने की शक्ति है, वो शक्ति जिसमें होती है वो बोध है। जिसके बिंब को लेकर प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब जाकर मकान में भी प्रकाश करता है, तो वो प्रकाश करता है दर्पण का प्रकाश प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब में जो बिंब आता है वो है सूरज। सूरज का वर्णन करो तो सूरज का वर्णन कैसे करें, कि जिससे दर्पण प्रकाशित होकर दर्पण दूसरों को प्रकाशित करता है, जिसके प्रकाश से वो सूरज है। ऐसे मन बुद्धि इंद्रिया में जो शक्ति जानने की आती है, वो शक्ति जानने की जिसने आती है वो परमात्मा है, वो बोध है। बोध का वर्णन कैसे कर, इनको छोड़कर बोध का वर्णन आप कैसे करोगा। जैसे देखने की शक्ति का नाम चक्षु इंद्रिय है, ऐसे चक्षु का वर्णन करो, चक्षु का खुद का वर्णन करो, चक्षु बताओ कैसे वर्णन करोगे। जिससे दिखता है वो चक्षु है, ऐसे चक्षु आदि ज्ञान इंद्रियां और मन बुद्धि आदि अंतःकरण, ये अंतःकरण जिससे काम करते हैं वो है। यदि आदित्य के तंते जो जगत भाष्य थे, अगर हम आदित्य का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, यह चंद्रमा से यह चंद्र चंद्रमा मेरे अग्नि प्रकाश है, तब तेज विद्यमान वो तेज मेरा है, वो जिसका तेज है वो बोध है। देखो सूर्य से सप्रकाश मिलते हैं, दर्पण है वो, दर्पण है वो सूर्य जी को लेकर ऐसे करता है तो मकान के भीतर प्रकाश कर देता है वो दर्पण, पर दर्पण में खुद में ताकत नहीं है प्रकाश करने की, दर्पण गत तेज करता है ऐसे आदित्य गतन तेज, आदित्य में जो तेज है जो अखिलम जगत भास है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है वो परमात्मा है, उपोध रूप है। मानो सुंदर दर्पण में आया हुआ प्रकाश मकान में अंधेरे में प्रकाश कर देता है, वो जिसके प्रकाश से दर्पण अंधेरे में प्रकाश करता है वो सूर्य है। ऐसे जिससे इंद्रियां अंतःकरण प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित करते हैं, जिस प्रकाश को जिस ज्ञान को लेकर के वो ज्ञान बोध है। अब उसको बोध का वर्णन कैसे करें, ऐसे बोध हो जाता है आप बांधे को तो भाई मन बुद्धि इंद्रियां क्या है, जैसे दर्पण है ना, दर्पण दर्पण क्या है, मिट्टी है, दर्पण तो मिट्टी है, मिट्टी पर मिट्टी में भर गए, एक मिट्टी की ठीकरी होती है, एक मिट्टी का दर्पण होता है, तो है तो मिट्टी दोनों एक ही है, परंतु तो स्वच्छ मिट्टी जितनी स्वच्छ अधिक है उतना बिंब ज्यादा पकड़ता है, जितनी साफ होगी निर्मल होगी उतने, अगर उसमें भी कड़ी लग जाएगी तो बहुत तेज हो जाएगा, दर्पण के कड़ी लगा देते हैं मुख दिखता है, नहीं तो इतना मुख स्पष्ट नहीं दिखता बिना कड़ी के, तो उनके से वो बिंब पकड़ता है। तो ऐसे मन बुद्धि एकाग्र होकर बुद्धि के जिससे बुद्धि से पकड़ दी जाती है वस्तु है, ज्ञान सुनना मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य मन परमात्मा है, तो परमात्मा है तो वो परमात्मा है सत्ता रूप से, और वो चेतन रूप से कल जैसे का ज्ञान रूप से, चेतन क्रिया का नाम नहीं है किंतु ज्ञान का नाम है, तो ज्ञान बुद्धिगत ज्ञान आता है जिस ज्ञान से संसार को जानते हैं, तरह से विद्या जानते हैं, आप पढ़ गए तो बुद्धि में आपने समझ लिया, व्याकरण पढ़ गए आप, कोश पढ़ गए, काव्य पढ़ गए, ये पढ़ गए, तो शब्दों का आप ज्ञान करते हैं। शब्द दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक होता है एक ध्वन्यात्मक होता है, तो वर्णात्मक क ख ग घ है तो वर्णात्मक है, ये ध्वन्यात्मक है, दो तरह का शब्द होता है, तो शब्द दोनों दो तरह का ध्वन्यात्मक वर्णात्मक जो शब्द है ये शब्द पकड़ता है कान, कान में ये शब्द पकड़ने में आते हैं, तो कान के अंतर्गत जो आकाश है उस आकाश में ये शक्ति है, कान गत आकाश वो ज्ञान कर्णेन्द्रिय है, वो कर्णेन्द्रिय आकाश की है, तो वो शब्द को पकड़ता है, तो शब्द को पकड़ता है कान कौन के, जिससे सुनते हैं वो कान है, अब बोध क्या है जिससे कान पकड़ता है वो क्या को ज्ञान है,
वो प्रकाशक है प्रकाशित है ही नहीं,
प्रकाशित होता नहीं, कान से उसको नहीं जान सकते, उसके ज्ञान से कान शब्द को जानता है, चक्षु परमात्मा को नहीं देख सकते किंतु चक्षु में देखने की शक्ति जिसमें आती है वो परमात्मा है, संसार मात्र में जो चेतना आती है वो चेतना उस परमात्मा का स्वरूप है, जिससे आती है वो परमात्मा है, ये चेतना परमात्मा नहीं है, भूतामस में चेतना, भूतामस में चेतना मैं हूँ, तो चेतना जिससे आती है वो परमात्मा है, जिससे देखते हैं वो आंख है, ऐसे जिससे सब ज्ञान होते हैं, जितने ज्ञान है ज्ञानेन्द्रियां के ज्ञान है अंतःकरण का ज्ञान है, ये ज्ञान जिससे प्रकाश होता है वो परमात्मा है, इस वास्ते मन से परमात्मा का मनन नहीं होता, किंतु जिस शक्ति से मन संसार का मनन करता है, जिस शक्ति को लेकर उस शक्ति का नाम बोध है, ये बोध का वर्णन है, बोध का वर्णन करे तो बोध क्या है, ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान से सब प्रकाशित होते हैं, सब जितने हैं। ज्योति शाम पे तज्योति, ये ज्योतियां है ज्ञानेन्द्रिया और अंतःकरण, ये ज्योति है। इन ज्योतियों का भी ज्योति है वो, इनमें ज्योति वहां से आती है। ज्योति शाम पे तज्योति, तमसा पर अज्ञान से परे हो, अज्ञान भी जिससे प्रकाशित होता है। जैसे कहा ना कल बात बताई थी, वो ध्यान देने की बात थोड़ी सी, मानो इस विषय को हम समझ गए, इस विषय को हमने थोड़ा समझा और इस विषय को हम समझे नहीं, फिर को हम समझे नहीं। तो समझना, थोड़ा समझना और न समझना, ये सबका सब जिससे प्रकाशित हुआ है वो है। ध्यान दिया मन आंख क्या है, जो प्रकाश को प्रकाशित करती है, अंधेरों को भी कभी दिखता नहीं है। तो देखना न देखना, ये दोनों का ज्ञान जिससे होता है ना, देखने से ज्ञान हुआ। और यहाँ देखते नहीं है तो आंख वहां काम नहीं करती, जहां दिखता नहीं वह आंख काम नहीं करती है, पर आंख काम नहीं करती है, ये तो ज्ञान है ना आपको, कि ज्ञान काम नहीं, आंख काम नहीं कर सही है। तो आंख के अभाव को भी प्रकाशित करता है और आंख के भाव को भी प्रकाशित करता है। ऐसे बुद्धि में जो समझ में आ गई उस बात को भी प्रकाशित करता है और समझ में नहीं आई उसको भी प्रकाशित करता है। जो प्रकाशित करता है वो बोध है। अब इसमें पूछो ये बात,
बोध के समय सारी
इंद्रियां
निष्क्रिय हो जाती है, इसका मतलब?
हाँ, ये मानो इंद्रियां विषयों को तो प्रकाशित करती है, इंद्रियां प्रकाशित कर देगी, जैसे रूप को चक्षु प्रकाशित कर देगी, परंतु चक्षु अपने प्रकाशक को प्रकाशित नहीं कर सकती, जिससे प्रकाश पाकर चक्षु रूप का प्रकाश करती है, उस जिससे प्रकाश को पाती नसल भार सीधे सूर्य, सूर्य उसको प्रकाश नहीं करता, न शशांक को न पाव का, जिसको चंद्रमा प्रकाश नहीं करता, अग्नि भी प्रकाश नहीं करती उसी, जिससे अग्नि प्रकाशित करती है, जिससे चक्षु प्रकाशित करती है, जिससे मन प्रकाशित होता है, जिससे बुद्धि प्रकाशित होती है, और बुद्धि का भाव और अभाव दोनों प्रकाशित होते हैं। ये साफ उस की तरफ ध्यान लगाने के लिए अच्छी चीज है। बुद्धि की बात समझ में आ गई, बुद्धि समझ में नहीं आई, तो बुद्धि की समझ में नहीं आई तो बुद्धि तो नहीं पहुंची मां, फिर बुद्धि के अभाव को किसने प्रकाशित किया? वो बुद्धि के भी अभाव को प्रकाशित करता है, बुद्धि के भाव को भी प्रकाशित करता है। भाव अभाव दोनों को प्रकाशित करने में कोई फर्क नहीं है। बुद्धि की समझ में आ गई उसको भी वही प्रकाशित करता है बुद्धि के सहित, जहाँ बुद्धि नहीं पहुंची हो बुद्धि रहित को भी प्रकाश करता है, या हमारी बुद्धि नहीं काम करती। स्थूल दृष्टि से देखा जाए, अभी बाहर से कोई पूछे कि अमुक आदमी है यहाँ भाई, ये कोई पूछे तो महंत जी महाराज है, कहते महाराज नहीं है, और कोई नहीं है, महंत जी महाराज नहीं है। तो महंत जी महाराज नहीं है क्या कहने वाला भी नहीं है? घर में कोई नहीं है, एक मैं हूं और घर में कोई नहीं है, तो घर में कोई नहीं है ये कहने वाला तो है कि नहीं? अगर वो नहीं हो तो कौन कहता है घर में कोई नहीं, कहता कौन है? कहने वाला तो है ना। ऐसे अंधेरे को भी प्रकाश कर रही मानो बुद्धि के ज्ञान को प्रकाश करते है, बुद्धि जान नहीं जाती उसको भी प्रकाश करता है, तो वो तो है। वो प्रकाशित आदमी अमुक आदमी है और मेरे सिवा कोई नहीं है ये दोनों कहने वाला है, वो तो है उसको भी जानता है, घर में नहीं है उसको भी जानता है कि नहीं? ऐसे बुद्धि के समझ में आए उसको भी जानते हैं और बुद्धि के समझ में नहीं है उसको भी जानते हैं। वो जानना है परमात्मा तत्व का, उसको परमात्मा तत्व कहते हैं हम जानने के लिए है उनसे अगर ही। ये जीव है विषय कारण सुर जीव समेत सकल एक से एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जो ही सबका परम प्रकाशक है। इनको भी प्रकाश करता है, इनके भाव को भी प्रकाश करता है, इनके अभाव को भी प्रकाश करता है, वो परम प्रकाश है। राम अनादि अवधिपति सोई रो राम है। अब शंका करो कोई संदेह बोलो।
बोध के समय सारा शरीर और इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है,
बिल्कुल ये काम नहीं करती वहाँ। जैसे अभी ये लट्टू प्रकाश करता है ना, अंधेरे को दूर कर देता है, पर दोपहर के समय मध्यान के समय हजार बत्ती का लट्टू लगा दो तो लगातार प्रकाश करेगा क्या? चीजों को प्रकाश करेगा क्या? वो अंधेरे में प्रकाश करता है। ऐसे संसार में इंद्रियां अंतकरण काम करते हैं, परंतु परमात्मा तत्व को प्रकाश नहीं कर सकते। ये निरपेक्ष है, वो साधन भी करण निरपेक्ष है और तत्व करण रहित है, कर्ण रहित है। वो कर्णों को सबको प्रकाश करता है और कर्ण वहां नहीं चलते हैं, कर्ण सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे ये सबको प्रकाश करता है लट्टू, पर दोपहर के समय लट्टू खुद प्रकाशित होता है पर लट्टू प्रकाशित नहीं कर सकता। ऐसे सब कर्ण जिस प्रकाश को लेकर प्रकाशित करते हैं उस प्रकाश को कर्ण प्रकाशित नहीं कर सकते, कर्णों को सबको प्रकाशित वो करता है, वो बोध है। तो उसके सामने ये सब निष्प्रभ निष्प्रभ हो जाते, इनकी प्रभा नहीं रहती, इनका प्रकाश नहीं रहता, लुप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में लट्टू का प्रकाश लीन हो जाता है, बस उसको प्रकाश नहीं कर सकता। ऐसे इंद्रिया अंतःकरण बुद्धि सब लीन हो जाते, एक बोध रह जाता है। बोध इंद्रियों के भाव को और अभाव को, तो इंद्रियों के अंतःकरण के भाव को अभाव को, बुद्धि के भाव को और अभाव को, दोनों को प्रकाशित करने वाला है। तो बुद्धि का भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करने वाला बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता। आई सुन,
तो भगवान ये बोध हर समय रहता है फिर?
ये तो हर समय रहता है।
तो भगवान जब ये हर समय रहता है तो फिर ये शरीर हर समय निष्क्रिय
है? तो शरीर तो क्रिया करता है संसार में, संसार में क्रिया करेगा, परंतु बोध को प्रकाश नहीं कर सकता। ये
मतलब ये सारी क्रियाशीलता ही उसी से ऐसा
मतलब उसी से ही शक्ति उसी से ही आती है। जैसे जल जहाँ आता है वो जल आता है समुद्र का ही है, जल जल सब समुद्र का है, चाहे बर्फ रूप आवे, चाहे ओला रूप से आवे, चाहे बूंदा रूप से आवे, चाहे नदी रूप से आवे, चाहे कोहरा रूप से आवे, धवर रूप से आवे, आ तो है जल ही है वो, किस रूप से आवे।
निर्माण और ध्वंस उसी शक्ति से हो रहा है
जी,
ध्वंस और निर्माण
हाँ
उसी शक्ति से हो रहा है,
उसी शक्ति से हो रहा है। निर्माण ही नहीं, इनका निर्माण और निर्माण का अभाव और निर्मित वस्तु का ज्ञान और ज्ञान का अभाव, ये सब उसी से होता है। जिस बोध से ये संसार का, संसार के निर्माण का, संसार के अभाव का, संसार के भाव का और संसार के परिवर्तन का, इनका सब कुछ ज्ञान उस प्रकाश के अंतर्गत ही होता। जिस ज्ञान के अंतर्गत वो चेतन है, उसका नाम चेतन है। कल बताया था जो भी चेतना है क्रिया है वो चेतन है, ऐसा जड़ में क्रिया को इसमें क्रिया नहीं है, जड़ है ये नहीं है। इस प्रकार नारायण 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 नारायण,
तो प्रकृति कुछ है ही नहीं, उसी की शक्ति से ही सारा हो रहा है।
बस यही बात है, इस बात से सबका उद्गम वहां से है। जैसे गंगा जी गंगोत्री से प्रकट होती है तो गंगा जी के उद्गम स्थान हुआ है, उससे गंगा जी आती है। फिर बोलते होते कलकत्ते में गंगा जी में हवाई जहाज चलता है, समुद्र में चलने वाला जहाज गंगा जी में चलता है, पर गंगा जी उद्गम स्थान है वहाँ, वहाँ से धारा है छोटी, वो तो गंगा जी उद्गम स्थान खास। ऐसे जितना ज्ञान समझ आती है शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ज्ञान होता है, मन का ज्ञान होता है, बुद्धि का ज्ञान होता है, ये सब की सब ज्ञान जिससे होते हैं और ज्ञान और ज्ञान का अभाव जिससे होता है वो परमात्मा, वो बोध है। नारायण नारायण।